रोजाना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष पहले अर्थात 3141 वर्ष ईसा से पूर्व 3141 ईयर्स बीसी बिफोर क्राइस्ट जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र करीब करीब 86 वर्ष की थी और अर्जुन की उम्र 84 वर्ष की 84 ईयर्स की। इस दिन है कार्तिका बाहुला अमावस का, जिस दिन कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। अर्जुन, धनुधारी अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं जाकर देखना चाहता हूं कौन कौन से योद्धा मुझसे, हमसे, पांडवों की सेनाओं से युद्ध करने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, धीरे धीरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। दूसरी ओर अंध राजा धृतराष्ट्र संजय से, अपने सारथी संजय से कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्ध स्वाहा माम का पांडवा चैव किम कुर्वता संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्ध स्वाहा, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, समावेता का अर्थ है जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, युद्धस्वा का अर्थ है युद्ध की इच्छा लिए हुए, माम का अर्थात मेरे पांडवा अर्थात पांडु के के एव किम और क्या, अकुर्वरता संजय, किम अकुर्वरता का अर्थ है क्या किया, हे संजय मुझे ये बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे और पांडवों के बच्चों ने क्या किया। ध्यान रहे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक भी यही है। एक अंधा राजा संजय से पूछ रहा है जो उसका सारथी है, विचार कीजिएगा आप। दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हुआ देख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, जायजा ले रहा है, अनुमान लगा रहा है कि मुझसे कौन कौन युद्ध करने आए हैं, इन सब की शक्ति क्या है। हम महाभारत में नहीं जा रहे, इस समय हमारा प्रश्न यह है युद्ध क्यों हुआ। युद्ध की नौबत क्यों आई, ध्यान दीजिएगा, लुक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभ कहां से होता है। ये पूरी महाभारत की कथा आरंभ कहां से हो रही है, महाभारत क्यों हुई, कारण क्या था, दोनों भाइयों में अनबन, दोनों भाइयों में शत्रुता, पांडवों कौरवों में शत्रुता, व्हाट वॉज द रूट कॉज ऑफ द महाभारत। महाभारत के युद्ध के जड़ तक जाइए, ग्रीड एंड जेलसी ऑफ कौरवस, लालच और ईर्ष्या की भावना जो कौरवों के मन में थी उन्हीं भावनाओं ने उनको प्रेरित किया कुकर्म करने के लिए। और नौबत युद्ध तक आ गई। पांच पांडव पांच वैल्यूज के प्रतीक हैं, सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा। कौरवों का अर्थ है सो बुराइयां, लेकिन ये बुराइयां हमारे शरीर के बाहर नहीं, हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन के भीतर वास करती हैं। मोटी मोटी बातों पे ध्यान दिया जाए, भगवान बाबा ने कहा षट शत्रु, छह आंतरिक शत्रु, बस काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर। काम का अर्थ है लस्ट एंड डिजायर, क्रोध का अर्थ है एंगर, मोह का अर्थ है अटैचमेंट, लोभ का अर्थ है ग्रीड लालच, माफ कीजिएगा, मोह का अर्थ अटैचमेंट, लोभ का अर्थ है ग्रीड लालच, मद का अर्थ है प्राइड ईगो अहंकार, मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या जेलसी। आप जरा छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, क्रोध आ रहा है, आप उसे क्रोध करेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद आप अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको भूख लगी है, आप खाना खाने बैठेंगे, एक रोटी दो रोटी पांच रोटियां दस रोटियां पचास रोटियां खा लेंगे, अंत में आपका पेट भर ही जाएगा। वो अलग बात है बाद में फिर भूख लग जाए पचने के पश्चात, उस वक्त आपका पेट भर जाएगा। सब चीजों का अंत है, केवल अंत नहीं है तो लोभ का ग्रीड का। आज आपके पास एक मकान है, आप दो चाहेंगे, कल दो हो जाएंगे आप तीन चाहेंगे, तीन हो जाएंगे आप पांच चाहेंगे, दस चाहेंगे। आज आपके पास बैंक में कुछ पैसा है, आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। आज आपके पास जो भी है आप उससे ज्यादा चाहेंगे, चाहे उससे कितना भी ज्यादा मिल जाए उससे और ज्यादा चाहेंगे। मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देर इज नो एंड टू द वॉन्ट्स, देर इज नो एंड टू द ग्रीड। दूसरी बात सोचिएगा, आप बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, आपने देखा सामने से कोई स्त्री गई और उस स्त्री ने बहुत ही महंगे हीरे जवाहरात पहन रखे हैं, उसका नेकलेस, उसकी बालियां, उसके कंगन, जगह जगह सोना लटका हुआ है, श्रृंगार बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है। आपके मन में आएगा ओ वेरी नाइस, लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो हीरे कैसे चमक रहे हैं, देखो मोती कैसे चमक रहे हैं, देखो पन्ने कितने अच्छे लग रहे हैं। You will appreciate it. You will admire it. आप प्रशंसा करेंगे। हो सकता है आप उसी से ये कह बैठे कि बहन आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपके वस्त्र, आपका परिधान, आपके गहने, आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर दिख रही है। आपके मन में शायद ये भावना आ जाए, हो सका तो कभी किस्मत में रहा तो हम भी खरीदेंगे। आप थोड़ा और आगे जाते हैं, वहां आपको कोई आपका मित्र नजर आता है। और उसने भी उसी प्रकार की चीजें पहन रखी हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा, विचार आएगा, हाउ कुड शी अफोर्ड इट, इतना पैसा कहां से उसके पास आया। अगर वो पहन सकते तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। क्योंकि आपका मित्र आपके लेवल का है, वहां ईर्ष्या की भावना तुरंत आ जाएगी। आप कोई काम करते हैं बहुत अच्छा सा करते हैं, किस संस्था में है, किसी ऑफिस में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी व्यापार में है, और आपके मित्र जो बिल्कुल आपके लेवल के वो नहीं कर पा रहे, एकदम मन में ईर्ष्या आ जाएगी। और जब आपके अंदर ईर्ष्या के बीज उत्पन्न हो जाएं, पनपने लग जाएं, स्प्राउट होने लग जाएं, अंकुरित होने लग जाएं, समझ लीजिएगा ये ईर्ष्या किसी और को नहीं, आपको ही अंदर कुरेदेगी, आपको अंदर ही अंदर जलाएगी। इसलिए शब्द आया जलन करना। और ये एक पाप, ये एक शत्रु जो आपके अंदर वास कर रहा है, आपसे हजारों कुकर्म करा देगी। और ये कर्म केवल आपके लिए खराब नहीं है, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी खराब हो सकते हैं, पॉसिबल। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, डीएनए आपके ब्लड सैंपल में से डीएनए लेते हैं, वही ब्लड सैंपल तो डीएनए जो आपके अंदर था वो आपके बच्चों में भी मिल सकता है, आने वाली पीढ़ियों में मिल सकता है। कभी आपने सोचा कि एक छोटी सी ईर्ष्या की भावना क्या क्या कर सकती है? दुर्योधन ईर्ष्या से जल रहा था, क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, खुद भी मारा गया, उसके 99 भाई भी मारे गए। जीत हमेशा धर्म की होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्ध स्वाहा, माम का पांडवा चहल किम अकुर्वर्ता संजया। भगवत गीता का सर्वप्रथम श्लोक, पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे धर्म। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78 श्लोक, अखिरला श्लोक, श्लोक नंबर 700, 700वां श्लोक पूरी गीता का, क्या कहता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विद्यो भूतिर्ध्रुवा नितिन मतिन ममः। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थरो धनुधरा, जहां पर गांडेधारी धनुधारी अर्जुन है, तत्र श्री विजयभूतिर, वहीं पर श्री विजय भूति अचल है, भूति ध्रुवा नीति मित्र मम, अर्थात नीति है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, दिस इज माय बिलीफ। कहां श्लोक खत्म हुआ? मम, पहला श्लोक आरंभ हुआ धर्म से, अखिला श्लोक अंत हुआ मम में। इन दोनों शब्दों को साथ में जोड़ दो, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। संपूर्ण भगवद गीता का जो संदेश है, मेरा धर्म क्या है। ध्यान रहे, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस समय ना हिंदुइज्म था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना इस्लाम था, ना जैनिज्म था, ना बुद्धिज्म था, कोई धर्म नहीं थे। धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटीज। धर्म का अर्थ है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा के रास्ते पे चलना। यहां पर धर्म का अर्थ है राइट कंडक्ट, राइटियसनेस। याद रहे, आप पे किसी कर्म से किसी को दुख पहुंच जाए, आपकी इच्छा भावना किसी को दर्द दे दे और उस बंदे की आह आपको जन्म जन्मांतरों तक भस्म करती रहेगी, ना जलेंगे ना बुझेंगे, केवल सुलगते रह जाएंगे। जो व्यक्ति इच्छालु होता है वह सुलगता रहता है, ना पूरा जल पाता है ना पूरा ठंडा हो पाता है, सुलगता रहता है। जैसे अंगीठी में अंगारे सुलग रहे होते हैं, मेरा धर्म क्या है। आपके जीवन में जो भी पोजीशन हो, आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आप किसी व्यापार में हैं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, आपके संस्था में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ध्यान रहे संतुलित होकर जीना। एक इच्छा की भावना महाभारत जैसे विराट युद्ध को कर सकती है। 18 युद्ध दिन के युद्ध में ना जाने कितने लोग मारे गए। विचार किया कभी आपने, महाभीष्म युद्ध जिसकी चर्चा आज भी होती है 5000 साल के बाद भी, उसका केवल रूट कॉज था इच्छा। कभी आपने सोचा है आपके कर्म अगर इच्छा से भरे हुए हों, वो आपके आस पास का वातावरण दूषित कर देते हैं। हम कहते हैं पोल्यूशन, ये गाड़ी जा रही है धुआं कर रही है, ये गाड़ी गैस छोड़ रही है, या डीजल चल रहा है धुआं आ रहा है, या कोयला जल रहा है धुआं आ रहा है, ये फैक्ट्री धुआं कर रही है, ये इंडस्ट्री धुआं कर रही है। सोचिएगा आप, जो आपके भीतर इच्छा के कीटाणु हैं, वो आपके आसपास उस प्रकार का वातावरण बना देते हैं। दे क्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ जेलसी, एटमोस्फेयर ऑफ नेगेटिविटी, एटमोस्फेयर ऑफ नेगेटिव वाइब्स। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, माधव आप कहते हैं कि ये इच्छालु हैं, ये पाप से भरे हुए हैं सारे कौरव, तो इनको क्षमा करना बेटर नहीं रहेगा, बेहतर नहीं रहेगा, मारे क्यों। भगवान बोले ये कैंसर के कीटाणु हैं, ये कैंसर जैसे हैं। जिस प्रकार से कैंसर आपके यहां जमीन आपके शरीर में फैल जाए, उस भाग को काटना पड़ता है, कैंसर को बाहर निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से ये कौरव कैंसर बन चुके हैं, इसको निकालना होगा, इनको मारना होगा, यही उनके लिए फायदा है, ताकि अगले जन्म में वो प्रगति कर पाए, नहीं तो और खराब पे खराब कर्म करते जाएंगे। कभी आपने विचार किया कि आपके अंदर की ईर्ष्या की भावना आपसे खराब से खराब कर्म कर रही है? हम ये नहीं कह रहे कि आप आत्महत्या कर लें या उन लोगों को मार दें जो ईर्ष्यालु हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं उनके अंदर प्रेम की भावना को जागृत कर सकते हैं। ईर्ष्या का केवल एक ही एंटीडोट है, दैट लव लव एंड लव। प्रेम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अन्यथा आप गीता को पढ़ते रहिए, रामायण को पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, जब तक आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तब तक सारी साधनाएं आपकी बेकार हो जाती हैं। साधना का अर्थ यही है, अपने आप को साधना, सीधा करना, इरेक्ट करना। साधना का तात्पर्य यह है कि आपके अंतर के छह शत्रु बाहर निकल जाएं, परिवर्तित हो जाएं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। जब तक ये शत्रु मरेंगे नहीं, आपको अपने धर्म का एहसास नहीं होगा, आपको अपने कर्म का एहसास नहीं होगा। धर्मम मम धर्मा, मेरा धर्म क्या है प्रभु? ध्यान रहे, महाभारत युद्ध होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। दुर्योधन भगवान कृष्ण की सारी आर्मी मांग लेता है, कृष्ण केवल भगवान और अर्जुन केवल भगवान कृष्ण को सारथी के रूप में मांगता है। आपको अगर सारे संसार की दौलत मिल जाए, सारे संसार के पैसे मिल जाए, सारे संसार की सृष्टि की शक्तियां प्राप्त हो जाए, तब भी अर्जुन सबको मार सकता है, क्योंकि उसके साथ उनका सारथी है भगवान कृष्ण। सारथी मीन चैरिटियर, चारथी मीन ड्राइवर। हु ड्राइव्स यू? आपके जीवन को कौन आगे लेकर जाता है? चालक कौन है आपको जीवन का? कौन आपको निर्देशन देता है? कौन आपको डायरेक्ट करता है? कौन आपको दिशा देता है? कौन आपको डायरेक्शन देता है? कौन आपको बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? इसलिए अब समय आ गया है कि भगवान से वो प्रार्थना करना बंद कर दें कि आपको संसार की वस्तुएं चाहिए। प्रार्थना इतना ही कर लें कि हे ईश्वर, आप मेरे सारथी बन जाएं। क्योंकि अंतर के शत्रु का मानना इतना आसान भी नहीं होगा अगर आपने आज तक प्रयास नहीं किया है। कम से कम भगवान को तो आमंत्रित कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले सर्वप्रथम ईश्वर से बोले, दिन भर के सारे कर्म मैं आपको चरणों पर अर्पित करता हूँ, कर्म और कर्मों के फल भी आपको देता हूँ। सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, दिन भर में मैंने जो किया है सब आपको अर्पित करता हूँ, आपके और मेरे हृदय में मेरे सारथी बन के रहें। जिस प्रकार से आपने अर्जुन को विजय दिलाई है, उस प्रकार से मुझे भी इस संसार से विजय दिलवाएं ताकि मेरी मुक्ति हो पाए। विचार कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सप्ताह। जय श्री साई राम।
सत्य साई स्मरणम स्मरणम प्रति साई स्मरणम।